ஞானம் கருமத்தே அங்கீகிருத்தம் அப்படி அபாகுதர யுத்தம் நாச்சித்தம் தவை காரி காரணே சர்வ ஆத்மீ வசீரித்தே வசுதா விஸ்வ சம்பூர்ண பிரம்மாண்டத்தின் உற்பத்தி का साम स्थिति या पालन का निरोध लय का कर्म ये कर्म पे आपके ही ईश्वर की अकर्त कथक विलय अंगीकरण वैदिक शास्त्र द्वारा अब मान्य है अभी अपाप्रत समस्त कर्म से अच्युता युक्तम अनुकूल योग्य ना नहीं चित्रम विचित्र तरई आपने कार्य कारणे समस्त कारण का मूल कारण सर्व आत्मी सभी प्रकार से व्यतिरिक्त विलग ची वस्तुतः मूल वस्तु ट्रांसमिशन को ऊपर बाईस दिवांगे स्वामी श्री गौपाल हे भगवान यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा प्रलय से सर्वथा व्यक्त हैं और इन कार्यों में आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता क्योंकि सर्वात्म रूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी चिंत शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। कल के अंत में साक्षात ज्ञान एक दत्त का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर उसे रसातल ले गया, किंतु श्री भगवान ने हैग्रीड का रूप धारण करके वेदों को पुण्य प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। ये सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मैं आपको सादर प्रणाम सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पर्य यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर है किंतु इस भौतिक जगत में कभी वह पकड़ होता है कभी लुप्त होता रहता है। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है, किंतु भगवान है गिरी अथवा भगवान वैदिक ज्ञान ही की सदैव रक्षा करते हैं और वह ज्ञान यथासमय ब्रह्मा जी के माध्यम से पुण्य विपरीत होने लगता है। ब्रह्मा जी ही श्री भगवान के विश्व पात्र प्रतिनिधि हैं, अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान कोश की पुण्य जागना की तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री उद्वेग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृतम सतम कतो जयंगे मुखम प्रतिवाद मुखम नुंदा गुरु गुरुदेश गुरुदेव वांछा कल्प प्रवेश पास सिंधु वेद पति का नाम मारे राष्ट्र नमो नमः नष्ट प्राश वेश नित्यम भाग सेवा भगवत नित्यम श्लोक भक्त भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो यहाँ पर इन दो श्लोकों में आप बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। पांचवें श्लोक में बतलाते हैं कि जो भगवान है, जो भी संसार चलता है, पृथक रहते हुए भी सब कुछ उनके ही अंदर चलता है। कुछ भी चल अचल कुछ भी उससे स्वतंत्र नहीं, कोई भी बस। भगवान गीता में कहते हैं मैं दक्षिण प्रकृति सूत्र से चला चला, मैं दक्षिण, ये जो प्रकृति है जो चल रही है, मैं दक्षिण, मेरी मेरे आदेश से चल रही, मैं दक्षिण सूत्र से चला चला। हे जुलाने में कौन सा चल रही है, कुंती पुत्र यह स्वतंत्र नहीं। और यहां पर इस संसार में जो भी देवी देवता है, यहां पर ब्रह्मा शिव पार्वती दुर्गा कोई भी इससे स्वतंत्र नहीं, सब इन्हीं के आदेश से सब कुछ चलता है। अध्यात्म जगत या ये भौतिक जगत, चल या अचल, जैसे कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हिल सकता, इनकी आज्ञा जगत है। हर एक वस्तु का इनको ज्ञान है। ये जो क्वालिटी है केवल कृष्ण में पूर्ण ज्ञान है। कृष्ण को हर एक वस्तु का, एक प्राणी का, किस जगह पर वो है, वो पापी है, वो जो पुण्य आत्मा है, या कुछ भी है, भक्त का तो भगवान विशेष उसका तो ख्याल रखेंगे। इसे एक एक प्राणी का पूर्ण करोड़ों अरबों अरबों जन्मों उनको उसको क्या उसका कर्म है, आगे कर्म क्या होने वाला है, अब क्या कर रहा है, हर एक वस्तु का उनको ज्ञान, ये है कृष्ण। इसलिए कृष्ण को भगवान कहा जाता है। और भगवान कहने के जो क्वालिटी है और किसी में भी नहीं है, केवल कृष्ण में ही हो। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इसका जो जो ज्ञान है हर एक वस्तु का, जो संसार जब रचना की जाती है, रचना तो चलती आती है, कभी उसका विलय होता है, कभी बनती है, उत्पत्ति होती है और नष्ट होती है, मगर चलती नित्य चलता रहता है। ये जो जेल बनी है ये भौतिक संसार है। और जब भी बनाया जाता है कोई भी वस्तु आप बनाते हैं, ये कैमरा बना गया, मगर कैमरा बनने से पहले इसका मेन्यू बनाया जाता है, इसकी बुकलेट बनाई जाती है कि ये कैसे बनाया जाएगा और ये कैसे, ये फंक्शन कैसे करेगा। जब ये माइक्रोफोन बनाया गया तो इसको बनाने से पहले उसकी मैन्यूअल बनाई जाती है। मैन्यूअल जब तक नहीं बनता तब तक कोई भी वस्तु नहीं बनती, कोई भी वस्तु आती नहीं। भारत में तो आपको कोई चीज खरीदनी है तो एकदम आप बुला लेते हैं भाई, कोई भी मैकेनिक को बुला गया, चाहो इसको ठीक करो, इसको इसको चला दो, वो भी पढ़ के देखता है, नहीं तो आपका आपका जो भी यंत्र है आपका खराब कर देगा। आप विदेश में जाइए, कोई भी वस्तु खरीदिए, पहले आपको उसका मैन्युअल पढ़ना पड़ता है, उसका मैन्युअल क्या है, और मैन्युअल के हिसाब से वो वस्तु बनती है। मैन्युअल के हिसाब से ही वस्तु को जो है उसको वो फंक्शन करती है, वो चलती है। तो संसार के लिए भगवान ने सबसे पहले वेद को प्रकट किया, वेद के बाद ज्ञान, जब वेद मिलता है ब्रह्मा जी को उससे ही सब कुछ उत्पत्ति होती है। और कोई मैन्युअल आपकी चोरी करके ले जाए तो आपको संकट पड़ जाए, कभी कल को प्रॉब्लम हो तो कैसे ठीक करेंगे इसको। मधु और कैटन जो दो दैत्य थे, उन्होंने जब चुरा लिया ब्रह्मा जी से ज्ञान चुराया, तभी अब कोई पुस्तक नहीं चुराई थी, जैसे भी ज्ञान चुराया उसका कोई जो भी कारिका होगा राक्षसों ने ज्ञान चुराया तो हैग्रीव भगवान बनकर हैग्रीव आए और उस ज्ञान को रसत्व से उठाकर लेकर आकर श्री ब्रह्मा जी को दे दिया। और ये जो ज्ञान है, ज्ञान तो रहेगा ही, हमको शायद कभी दिखाई दे कि लुप्त हो गया है, मगर लुप्त नहीं होता। जैसे जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि सूरज है, तो सूर्य निकलता है, बादल आ जाए तो लुप्त हो जाता है, हमारे हमको दिखाई नहीं देता। मगर कोई भी संसार में इतना बड़ा बादल नहीं है कि टोटल सूर्य को कवर कर जाए। हमको ऐसे लगता है कि सूर्य निकला ही नहीं है, हफ्ता सूर्य नहीं निकला, जब घर सर्दी आती है तो देखते हैं कि सूर्य नहीं निकला एक हफ्ता या दो हफ्ता या तीन हफ्ता या कुछ भी। तो मगर वो सूर्य कभी अपनी जगह से लुप्त नहीं होता, हमारी दृष्टि को लुप्त होता। इसी तरह ज्ञान, और ये जो वैदिक साहित्य है हमारे, पुराण मीन पुराण, वेद मीन ज्ञान, ये कोई आजकल की नहीं, कोई कोई धर्म बना 500 साल से, कोई धर्म बना 1400 साल से, कोई धर्म बना 2000 साल से। आजकल रोज धर्म के नए से धर्म निकल रहे हैं, उनकी अपने अपनी पुस्तकें निकल रही हैं। मगर ये जो है, ये जो वैदिक धर्म है, जो वेद शास्त्र है, ये कोई वैसी पुस्तक नहीं है कि ऐसी किसी ने लिख दी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले किसी ने लिख दी और वो एक धर्म की पुस्तक बन गई। ऐसी पुस्तक नहीं है। ये तो ज्ञान है, वेद ज्ञान, और पुराण मीन पुराना, पुराना ज्ञान, और जो हमारे इतिहास है, पुराना इतिहास और ज्ञान, रामायण महाभारत इतिहास और 18 पुराण जो बिल्कुल पुराने हैं, और वेद जो हमारा जो ज्ञान है, ये पुराना ज्ञान है, इतिहास है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। 1947 में जो भारत जब स्वतंत्र हुआ विदेशियों से, यहाँ पर स्वतंत्र तो अभी नहीं, अभी भी विदेशी राज कर रहे हैं अलग तरीके से, यहाँ पर आज भी विदेशी भाषा, विदेशी तो चले गए होंगे मगर उनकी जो भाषा छोड़ गए हैं और जो जो अपना पहरावा छोड़ गए हैं। पहले कभी यहाँ पर हमारे जो चाय वाली हमारे तो छाछ है, ये जो लस्सी है और नींबू पानी है, ये हमारा ये चाय वाय ये सब ये जो भी कुछ आया, मैं कल बता रहा था अपने किसी को कि ये बेकरी बेकरी जो बिस्किट बिस्कुट हैं ये सब वहाँ से आए हैं। ये हमारा वैदिक नहीं है। हमारा वैदिक तो ये है कि जलेबी है, वो अमृती है, वो तल हो उसमें, हमारे में तलना होता है, हमारे सब कुछ घी में बनाते हैं सब कुछ। ये बेकिंग है, ये केक है, ये सब कुछ ये तो उनका है, विदेशों का है, मगर छोड़ गए। मगर इतना कुछ करते करते हुए भी कलयुग का प्रभाव जब पड़ता है, मगर आप देखिए कितने हजार साल से जो विदेशी आए और लूटा, मंदिर तोड़े, कई कुछ एक कलयुग का प्रभाव है। कितना महाप्रभु कहते हैं हरिदास, कल काले यमुना पार गो ब्राह्मण हत्या करे अति दुराचार, यवन जो भी खाते हैं, जो भी देश आए लूटते खाते लूटे, यवन, ये यवन लोग जो हैं, ये इनका काम है मंत्र को तोड़ना, ब्राह्मण को मारना, गौ की हत्या करनी, ये कलयुग का प्रभाव है। मगर आप देखें इतने सालों से इतने मंदिर टूटे, इतने ब्राह्मणों को मारा, उनका जनेऊ जलाया, कई कुछ आप इतिहास पढ़िए, मगर फिर भी आप देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक जो कल्चर है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। हांगकांग के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही, वो बोलते कि आप, मैं किसी धर्म विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहता मगर जो भी आप समझ सकते हैं, वो बोलते जहां भी जाते हैं वहां का धर्म नष्ट कर देते हैं, वहां की संस्कृति नष्ट कर देते हैं, मार मार तलवार के जोर से। मगर बोलते केवल एक हिंदू ऐसा धर्म है जिसको वो नष्ट नहीं कर सकते। हम हिंदू धर्म का तो नहीं, हमारा तो वैदिक साहित्य हिंदू धर्म को, जब मुसलमान आए तो उन्होंने हम लोगों को हिंदू कह दिया, टाइटल उन्हीं का दिया हुआ। भगवान कृष्ण चार वेद 18 पुराण रामायण महाभारत कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं, ये तो एक शरीर से संबंधित है, ये सिंधु नदी के इधर रहते हैं तो मुसलमानों ने उनको हिंदू कहने लग गया, ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। कृष्ण तो कहीं नहीं कहा, कृष्ण तो कहते हैं हमारे जो जब कृष्ण कहते हैं भागवत में सब एक पुरुषा करो धरना, सब पुरुषा मनुष्य के लिए कहते हैं, जब कृष्ण बात करते हैं तो किसी हिंदू की भी करते, कृष्ण का जब करते हैं हिंदू में क्या बोलो, मनुष्य सर्व योनिषु कौन कर सर्व योनि, जितना भी योनियां कृष्ण गीता सर्व योनियों की बात करते, कोई धर्म हिंदू की बात करता है, कोई धर्म सिख की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई ईसाई की बात करता है, मगर कृष्ण कभी नहीं करते इन वस्तुओं की। ये तो शरीर से संबंधित धर्म है, ये कलयुग के धर्म है, सर्व योनिषु कौन कर, ये कृष्ण का धर्म है, सर्व योनिषु कौन कर, सर्व प्राणी जो भी प्राणी है। प्रभुपाद जब लंदन गए तो वहां पर प्रेस रिपोर्ट में पूछा, क्योंकि कितने कितने लोग जाते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं और सोपुर महात्मा आप कह सकते हैं वो जाते हैं, उनका काम है कि किसी ना किसी तरह अपना उनका जो 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 उनका जो संस्था है वो बढ़े, उनका वो उद्देश्य होता है। जब प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए यहाँ पर, बोलते आपने मैं इसलिए आया हूं कि आपने सब कुछ भारत से ले आया, आपने हर एक वस्तु रूप ली वहां से लेके आए, मगर आप एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छोड़ आए भारत में।
तो बोले आप सबसे महत्वपूर्ण बात छोड़ आए, अरे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या छोड़ आए आप वेद शास्त्रों को छोड़ आए, जो वेद का ज्ञान है वो मैं छोड़ आए हैं यहां पर, और मैं आपको पर्सनली देने आया हूं यहां पर। प्रभुपाद बोले कि मैं पर्सनली देने आया, और दिया उन्होंने। जैसे यहां पर जो ब्रह्मा जी हैं वो सोचते हैं कि गुरु गुरु हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये जो ज्ञान के बगैर तो जो प्राणी है वो तो यहां ही फंसा रहेगा ये संसार में, ये गुरु का उद्देश्य है कि किस तरह प्राणी का उद्धार हो, और ऊपर से चेतना महाप्रभु कि नीच से नीच व्यक्ति भी जो है उसका किस तरह उद्धार हो। आजकल प्रचार चलते हैं, बड़े बड़े गुरु आते हैं, वो आके अपने शिष्यों को ये बोलते हैं कि आप सब पुण्य आत्माएं हो और मैं आया हूं आपको लेने के लिए, और आप बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हो, सब आप आइए आइए मेरे पास आइए, मुक्ति सेल के लिए लगी हुई है, ये साधारणता बात है। वो अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं कि वो आप सब पुण्य आत्मा हो और मैं आपको लेने आया हूं, मेरे को कोटा दिया गया है। पूछो भगवान कौन है, भगवान का पता नहीं है, भगवान कौन है, अरे वो तो निराकार है, आपको भगवान के बारे में नहीं, आप तो सिर्फ ये जन्म मरण के चक्कर से छूटिए, हम आपको मुक्ति देंगे, ये उनकी फिलॉसफी है। ये कलयुगी गुरु हैं, क्यों, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में देखिए जो बड़े बड़े राक्षस भी होते थे उनको भी ज्ञान होता था, उनको भी बोध होता था कि भगवान कौन है। दूसरे युगों में देखिए बड़े बड़े राक्षसों को भी पूछिए आप कि भगवान कौन है, वो बोलेंगे कृष्ण या विष्णु भगवान है, उनको सबको पता था, राक्षसों को भी पता था कि भगवान विष्णु है और कोई नहीं है। आजकल के बड़े बड़े साधुओं को पूछे कि भगवान कौन है, अरे भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई अकल नहीं है, तो ये राक्षसों से भी गए गुजरे। और हमारे ये जो गुरु ऐसे बोलते हैं, हमारे जो वैष्णव गुरु हैं वो किसको लेने आते हैं, जब से नीचे गिरा हुआ है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो किस जगह पर गए, जो न्यूयॉर्क में बिल्कुल वहां पर ड्रंकर्ड, आप कभी जाके देख कोई गया उधर वहां पर, यहां से आप जा, हाँ आप गए ना, आपने देखा होगा, आज भी उस, हाँ आप भी गए हैं, अच्छा आप जैसी सिटी में ही थे, अच्छा आप वहां पर देखिए, आज भी वहां पर वो पार्क में आप जाइए, जिस जगह पर से कीर्तन शुरू किया प्रभुपाद जी ने, उस पार्क में आज भी आप देखिए सब वहां पर वो कोई ड्रग खाया हुआ है, कोई कुछ है, मगर उनको पास जाइए, कैसे उद्धार कर दिया ठाकुर जी ने, भगवान ने। जब भी भक्त जाता है तो सब लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, हरि बोल, अभी भी सब लोग बोलते हैं। गिरे से गिरे लोगों का उद्धार कर दिया प्रभुपाद जी ने। ये गुरु का क्वालिफिकेशन है कि जो गिरे से, जैसे कोई डूब रहा है, अरे जो डूब रहा है उसी को तो बचाने का फायदा है ना, जो डूब रहा है बेचारा, अरे जिसको तैरना आता है उसको बचाने का क्या फायदा, वो तो तैर लेगा। प्रभुपाद जी ने जो डूबते हुए लोग हैं उनको बचाया। ये चेतना महाप्रभु की मूवमेंट है। और हम जो हमारा जो कर्तव्य बनता है ये जीवन में कि किसी ना किसी तरह इस जो ये अवसर है ये जीवन में मिला, और वो भी भगवान कृष्ण से हमारा संपर्क कराने वाले प्रभुपाद हैं, उनके बगैर हम नहीं, आज मैं बैठा हूं तो केवल प्रभुपाद जी के कारण बैठे हैं। ना हमारा प्रभुपाद से संपर्क होता, ना हमारा भक्तों से संपर्क होता, ना हमको कृष्ण के विषय में पता लगता, और आप भी कहीं ना कहीं बैठे होते और मैं कहीं बैठा होता, आप हम ऐसे वृंदावन में बैठकर भगवान कृष्ण की कथा वार्ता नहीं करते। ये बहुत बड़ा भाग्य है। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्ध्या नाम कश्चन वेति तत्वता। तत्व में जो कृष्ण हैं उनको पहचानने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ज्ञानी बनता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक बिरला व्यक्ति भगवान को तत्व में जान सकता है। भगवान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं ठीक है भाई, हमने बस माला कर ली, अपने चार नियम भी पालन कर लिए। ये चार नियम या माला करना ये तो एक बिगनिंग है, शुरुआत है। ये तो वासुदेव भगवती भक्ति योग परियोजिता यनति आशुवाराग्रम ज्ञानम च यदहेतुकम। वासुदेव भगवती, जब तक कृष्ण की भक्ति वासुदेव की भक्ति करते हुए ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। धीरे 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 धीरे, इतना भी धीरे मत चलिए कि कछुए, ठीक है कछुए की चाल से भी चलता 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 व्यक्ति एक नहीं तो दूसरे जन्म में तो निकल ही जाएगा, मगर इस जन्म में हम कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं होता, होता है, मगर करने के लिए हमको कुछ प्रयास तो करना चाहिए, और आभास जरूर होगा। आप दवाई अच्छी तरह से लेंगे तो निश्चय ही, एक कोई कोई आप दवाई लेते हैं उसका कोई काम किसी के ऊपर काम करती है, दवाई किसी के ऊपर नहीं करती काम, मगर ये भव औषधि जो चेतना महाप्रभु की भव औषधि है ये काम करती ही करती है, इसका कोई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं करती, ये करती है, मगर आपको खानी पड़ेगी। हम खाते हैं और 100 चीजें सोचते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। जितने भी भक्त बैठे हैं यहां पर वृंदावन में, आप देखेंगे कि आप सब लोग आज जैसे दर्शन किए होंगे तो जब भगवान के पास गए होंगे तो आपने कुछ ना कुछ तो प्रार्थना की होगी। ठाकुर के सामने जाते हैं तो जो भक्त की प्रार्थना वो अलग है कि इस तरह हे प्रभु मैं किसी ना किसी तरह आपके साथ मेरा संपर्क हो जाए, किसी ना किसी तरह आपका मेरे को दर्शन हो। दर्शन तो 24 घंटे करते हैं, भगवान बात करते हैं भक्त के। कृष्ण बलराम जो है वो कोई स्टैचू नहीं है वहां पर खड़े हुए, वो कृष्ण बलराम आपके साथ खा सकते हैं, आपके साथ खेल सकते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। तो आप कुछ ना कुछ प्रे की होगी जरूर। और कई बार बोलते हैं कि इतने साल हो गए मेरे को, 25 साल हो गए ठाकुर जी की प्रार्थना करता हूं, पता नहीं ठाकुर जी सुनते हैं कि नहीं सुनते। मैं एक घटना बताता हूं। यहां पर एक डॉक्टर अहमद है, कैंसर स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट है कनाडा के। तो उनका एक बार कोई सेमिनार था, तो सेमिनार में जब उनको फ्लाइट लेनी थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो डॉक्टरों को सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट. जब फ्लाइट ली तो रास्ते में जो जो मौसम था वो खराब हो गया. तो पायलट बोलता कि ये जो फ्लाइट है हम उस जगह पर नहीं जा सकते, हमको डिटोर करनी पड़ेगी, हमको फ्लाइट दूसरी जगह पर लेके जानी पड़ेगी. और दूसरी जगह पर जाने लगे तो फिर भी मौसम खराब, वो बोले कि यहां पर इमरजेंसी लैंड करनी पड़ेगी हमको. उन्होंने इमरजेंसी में वो लैंड कर दी अपनी फ्लाइट. अब फ्लाइट लैंड की तो वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचा दूसरा एयरपोर्ट. अरे भाई मेरे को तो उस जगह पर पहुंचा, मेरे को नाम भूल गया कौन सी जगह है. बोले भी मेरे को उस जगह पे पहुंचना है मगर वहां पर तो जाने में 10 घंटे लगते हैं, ड्राइव करके आप जाइए 10 घंटे लगते, 4 घंटे लगते हैं. और अब दूसरी फ्लाइट जो जाएगी वो 10 घंटे बाद जाएगी तो 14 घंटे 12 घंटे पहुंचने को लगेंगे. ऑप्शन क्या है, ऐसा करिए 4 घंटे ड्राइव करके चले जाइए, आपकी 4 घंटे को मीटिंग, आप पहुंच जाएंगे टाइम पर. गाड़ी हायर की, ड्राइव करने लग गए. रास्ते में क्या होता है कि वेदर वहां पर भी खराब हो गए, वहां पर भी बारिश आंधी तूफान आने लग गया. अब वो समय पर जीपीएस नहीं होगा, नेविगेशन सिस्टम, किसी ना किसी तरह जो जहां पर उनको मोड़ लेना था वो मिस कर गए और कहीं और भटक गए. वो भी करते करते देखा कि कंट्री साइड में बहुत उजाड़ बियाबान में चले गए. अब पता लग गया भाई मैं तो रास्ता भूल गया. अब मीटिंग वीटिंग छोड़ो, अब जब ऐसी समस्या आती है तो अब निकलना कैसे ये समस्या से, मीटिंग की बात अलग है. तो समस्या से निकलने सोचते सोचते वहां पर क्या देखते हैं, एक छोटा सा घर है, एक उजाड़ बियाबान में घर है. देखा भूख लगी है, प्यास लगी है, गाड़ी में चला रहा हूं, घबराया, वहां रोका और दरवाजा खटखटाया. वहां पर एक औरत ने दरवाजा खोला, बोले मैडम मैं यहां पर रास्ता भूल गया हूं, मैं कहीं पर जा रहा था और मेरे को पहले तो प्यास लगी है बहुत. बोले आप अंदर आ जाइए. उसको अंदर लेके गई, बिठाया, पानी का गिलास पिलाया, बोली आपको कुछ खाने के लिए मैं अभी देती हूं मगर मैं अभी प्रेयर कर रही हूं भगवान को, मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूं, कभी आपको मेरे साथ ज्वाइन करना तो आप आ जाइए, 2-4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको भोजन खिला दूं. जब आई देखा तो आप उसने जो भी घर के अंदर जो भी ईसाई धर्म होगा उसने जो भी अपनी कैंडल वगैरह जैसे भी करती होगी, उसने जब प्रार्थना कर रही थी तो उसने देखा वहां पर एक लड़का कोई बीमार वो पड़ा हुआ है, उसका बेटा. तो इस डॉक्टर ने उसको औरत को पूछा कि ये लड़का कौन है, तुम इतनी प्रार्थना कर रही हो, तुम 5-10 मिनट से आने से पहले भी इसके करती हो, इतना उसने अपनी एक, उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि बात बहुत बहुत ध्यान से वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे. तो जब उस डॉक्टर ने पूछा कि ये कौन है ये लड़का, तो बोलती ये मेरा ये लड़का है, मेरे उस बीमारी का नाम भूल गया. तो बोलती ओ तो क्या हुआ इसको, बोली इसको कैंसर है ये वाला, और तुम प्रार्थना किसके लिए कर रही थी. बोलती मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि यहां इस कैंसर का इलाज जो है वो केवल एक ही डॉक्टर के पास है, और वो डॉक्टर है उसका नाम है मिस्टर अहमद, और वो जो डॉक्टर है वो बहुत, मेरे पास तो पैसा नहीं है उस डॉक्टर के पास से इलाज करवाने के लिए, और ये मेरे का बेटे का इलाज केवल उस डॉक्टर से होगा, मैं कैसे वहां पर जाऊंगी, वो इतनी दूर रहता है, ना तो जाने का मेरे पास कोई साधन है, ना जाने का मेरे पास कोई पैसा है, और मैं एक गरीब औरत इस छोटे से गांव में रहती हूं, किसी ने मेरे को बताया कि इसका इलाज तो वही डॉक्टर करता है, तो मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु कि आप कुछ ऐसी कोई व्यवस्था बना दो कि किसी तरह उसके साथ मेरे बेटे का उसके हाथों से इलाज हो जाए. तो कहने का भाव क्या है कि वहां पर ठाकुर जी ने उसका करवाने के लिए, तो तब उसकी आंखों में आंसू आ गए उस डॉक्टर के, और बोलते हैं कि वो डॉक्टर के उसका भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ गया. तो मेरे कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि एक व्यक्ति है वो अपनी ऐसी प्रार्थना करने पर एक भौतिक वस्तु के लिए स्कृतिवान, इसको भक्त नहीं कहते, इसको स्कृतिवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मम जनास्कृतनवर्जुना आतीर्थाति ज्ञानी च वर्तरश्व। चार तरह के व्यक्ति भगवान कहते कि मेरे पास आते हैं, मगर भगवान उनको अभी भक्त की डिग्री नहीं देते, उनको केवल स्कृतिवान कहा जाता है। और जब भक्त, भक्त बनना बहुत बड़ी बात है, ये साधना है। जब हम शुरुआत करते हैं तो ये साधना भक्ति है, साधना भक्ति करते करते, मगर हमारा भगवान के प्रति इतना अभी सुरेंडर नहीं है, अभी भगवान के हमने इतनी शरणागति नहीं ली, और हम यही सोचते हैं कि भगवान प्रभु मैं तो आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, मगर आप मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहे। अरे भैया, हम इतने अज्ञानी, इतने मूर्ख हैं कि भगवान तो सुन ही रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार गलती से भी कह दे कृष्ण, तो कृष्ण इमीडिएटली उसको सुनते हैं। और हम तो रोज हर रोज क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हर बार कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण उसको पूर्णता से सुनते हैं। मगर जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, मंत्र चल रहा है, वो भी शुद्धि करता है, ये मत दे सोचिए कि शुद्धि नहीं करता। हर बार कृष्ण का नाम जीव पर आएगा किसी ना किसी तरह, अभी अपराध है, अपराध युक्त है, अपराध मुक्त है, या शुद्ध नाम है। अपराध युक्त नाम होता है, अपराध मुक्त नाम होता है, और शुद्ध नाम होता है। जिस व्यवस्था में भी हो, मगर उसका वो शुद्धि धीरे 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 वो शुद्ध हो जाता है, मगर करना पड़ेगा। और शरणागति में कैसे होता है, हमारे ठाकुर हैं, कई बार वो हमारी पिक्चर बिगाड़ देते हैं। हमारी जीवन का प्लान होता है ना, हम प्लान करते हैं, हर एक व्यक्ति अब ऐसा होगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा तो मेरा थोड़ा सा जीवन सुखी हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। आज मैं इस आश्रम में हूँ, ये ब्रह्मचारी आश्रम में यहाँ रहता हूँ, ये आश्रम को छोड़कर एक दूसरे टेंपल के आश्रम में चला जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ी सी सेवा करूँगा तो थोड़ा सा सुखी हो जाऊँगा, वहाँ नहीं चलेगा तो यहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ सुखी हो जाऊँगा। ये सुख के भाव में व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है, एक पिक्चर बनाता है जीवन की, अपने एक जीवन की पिक्चर बनाता है व्यक्ति। कई बार वो पिक्चर खराब कर देते ठाकुर हमारे। अब बोलो वो क्यों ठाकुर करेंगे खराब भाई? कोई पेंटर था, पिक्चर बना रहा था, इतनी सुंदर पिक्चर बना रहा था, ऐसे करते करते उसको निहारने लग गया, अरे क्या बढ़िया पिक्चर बनाई है मैंने। ऐसा निहार रहा था, वहां पर एक लड़का खड़ा था, देखा वहां पर नीचे बहुत बड़ी खाई है, ये आदमी गिर जाएगा, उसने एक पत्थर उठाया और पिक्चर के ऊपर मार दिया। जब पिक्चर के ऊपर मारा तो आया वो आदमी, एक तो पिक्चर की तरफ भागा, एक लड़के की तरफ भागा। अरे ये तूने क्या किया, अरे मूर्ख तेरे क्या किया, तू पिक्चर तो बना दी मगर पीछे पीछे जा रहा था, खाई में गिर जाता अभी मर जाता तू। ठाकुर बचाने वाले हैं और ठाकुर ही मारने वाले हैं। अब हम सोचते हैं मेरी तो पिक्चर बनाई थी, ठाकुर ने पिक्चर खराब कर दी, मैंने तो सोचा था भगवान आप ऐसा करोगे, मगर आपने ऐसा क्यों नहीं दिया। एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं श्याम सुंदर, एक तो श्याम सुंदर दास दो है, एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने एक भेजा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है, उस कोट नहीं मेरे को पता कहाँ का है, कोई भगवान था कृष्ण का भक्त और वो ठाकुर से प्रार्थना करता है, बीमार हो गया, बीमारी दूर ना हो, भगवान को प्रार्थना कर रहा है। अरे भगवान को तो एक एक वस्तु का पता है, जब हमारे मन में एक संकल्प थोड़ा सा ही आ जाता है, आज मैं चाहता हूँ मंदिर भगवान से बात करता हूँ, अरे भगवान तो तभी सुन लेते हैं। कृष्ण बलराम के सामने जाकर बोलेंगे जब यहां से सोचा मन में, तभी भगवान को पता लग जाता है ये सोच क्या आ रहा है। अब तो वो व्यक्ति सोचे भगवान को, हे भगवान बहुत प्रार्थना की बीमारी दूर ना हो, अब दूर ना हुई तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई ये ठीक है, ऐसा करो कि तुम्हारे ये ग्रह चाल है ये कर लो, तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। उसने वैसा किया, उसकी बीमारी दूर हो गई। अब दूर हो गई, ठाकुर जी के पास आता है फिर, अरे भगवान मैंने आपको इतना प्रार्थना किया, आपने कुछ किया नहीं, देखो एस्ट्रोलॉजर ने एकदम मेरी, उसने ऐसा किया, मेरा ठीक हो गया। अरे बेटा ठीक तो हो गया, मगर तू मेरी बात मानना, मेरे को भी पता है कभी मैं तू वैसे ही सहता रहता है और ये जन्म तेरा अकेला होता तो मेरे पास आ जाता। अब तू कर्म के बंधनों में फंस गया है, अब ये जो कर्म बंधन है ये तो काटना पड़ेगा, अब 3 जन्म और लगेंगे तेरे को। ये जो कर्म का बंधन है, ये जो ये हम अपने हिसाब से सोचते हैं, मगर ठाकुर को उसके हिसाब से सोचने दीजिए। मन दुखी है, मन सुखी है, लोगों का जो सुख होता है वो देखकर व्यक्ति दुखी होता है। अरे उसके पास ये वैभव, भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण जो 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 लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। भाई ने, भाई का घर बड़ा है तो बहन सोचेगी अरे उसके पास इतना बड़ा घर, मेरे पास इतना छोटा। अच्छा किसी तरह अपने पति को वो तंग करेगी, लेके दे मेरे को भी। हमारे पिताजी बोलते थे कि किसी का मुंह सेव खा खा कर लाल हो जाए और कोई व्यक्ति बोले इसका मुंह बहुत लाल है, भाई क्यों लाल है, अरे ये सेब बहुत खाता है। अच्छा मैं तो सेब ले नहीं सकता, वो थप्पड़ मार मार के अपने थप्पड़ मार मार के खुद का मुंह लाल कर लेता है। ये दुनिया का हाल है। दूसरे पास कुछ वैभव है, मैं भी लूं, उसका सुख देखकर दुखी होता है। जब वो दुखी होता है तो सुख होता है, अच्छा बढ़िया हुआ, मैं तो कहता था बढ़िया हुआ, यह दुखी हुआ। तो दूसरे के सुख दुख में खुद अपना सुख दुख ढूंढता है व्यक्ति। और संसार तो बहुत छोटा है, कब पता चल, कब निकल जाए पता नहीं लगेगा। हमारे 20-25 साल पहले हमारे मैनर में एक उन्होंने ड्रामा बनाया था, जर्नी, लाइफ जर्नी, रेलवे जर्नी। जैसे आप देखते हो ना, रेल में बैठते हो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था यहां पर एक बार, रेल में जाते हो और व्यक्ति सोचता है कि कोई आनंद ले रहा है। अभी एक किसी ने वो लिखा था, कोई एक्टर था बॉलीवुड का, अब वो अपने वैभव में फंसा हुआ था तो बोलता कि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं एक ट्रेन जर्नी में जा रहा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन अच्छी है, ट्रेन में सब सुख है, बाहर सीनरी बहुत अच्छी है, मैं आनंद ले रहा था, तो सोच रहा था बस आनंद ले रहा, तभी एक आदमी आता है तो अपना हाथ मेरे कंधे पे रख देता है। वो टीटी बोलता है भाई आपका स्टेशन आ गया। अरे भाई मेरा स्टेशन अभी तो नहीं आया। नहीं नहीं आपका स्टेशन आ गया भाई साहब, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मेरे को आगे जाना। नहीं आगे के पास टिकट नहीं आपके पास। व्यक्ति अपनी प्लान बनाता है, ये है वो है, कैसी प्लानिंग करता है, अपनी प्लानिंग करता है, मगर एकदम मृत्यु आती है, हाथ रख देती है, भैया तेरे को कैंसर हो गया है, 6 महीने के बाद आप मर जाओगे, 2 दिन के बाद मर जाओगे, 4 दिन के बाद मर जाओगे, मृत्यु तो निश्चित है। मगर इस मृत्यु को आने से पहले पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है जीवन का, सबसे मूल उद्देश्य जो जीवन का है वो केवल यही है। कितना भाग्य है हमारा, देखिए वृंदावन में बैठे हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं, कहीं पर भी आप निकलो, वृंदावन का एक सबसे बड़ा सुख ये है। आप दिल्ली में रहते होंगे तो आप जाएंगे, आपको नोएडा जाना पड़ेगा या आपको संत कॉलोनी संत नगर जाना पड़ेगा, संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश उधर जाना पड़ेगा, ठाकुर के दर्शन करने पड़ेंगे, मंदिर से बाहर आए फिर वही नरक पड़ा हुआ है, हर एक जगह नरक है वहां पर। किसी भी शहर में चले जाइए वृंदावन को छोड़कर, एक वृंदावन ऐसा है, कहीं पर भी आप निकलेंगे, यहां से निकले कहीं पर भी जाओ, आपको कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता ही रहेगा।